याद रखिए, दुनिया में भी आपके घर कोई दाल चावल बना के भेज दे और आप शुक्रिया और थैंक यू और बहुत अच्छा और बारकिल्ला और अल्लाह मुबारक लाऊँ फी मरज़क़ताहू वग़फ़िर लहू वरहम हूँ और एक जुमला तो बोल दें कि अल्लाह आपको जन्नत का खाना खिलाए, यकीन करें अगली दफ़ा वो आपके हिस्से की एक मुट्ठी दाल की और चावलों की पहले से डाल लेगी कि आपको भेजना है। और अगर खाया था, हम नहीं खाते, हम मेरे बच्चे नहीं खाते किसी और के हाथ का, बस वो मेरे ही हाथ का खाते हैं। और वो आके देखे 3 दिन पुराना खाना काउंटर पे पड़ा है, फ्रिज में जल रहा है, या पकड़ के नौकर को दे दिया। कोई आप किसी को बड़े प्यार से कुछ भेजे और वो कहते मैंने मासी को खिला दिया। देखिए, मासी को खिलाना बुरी बात नहीं है, पर आप वो खिलाएं जो आप पकाते हैं। किसी ने बड़े लाड़ चाव से आपको भेजा तो आपको खुद भी खाना चाहिए ना, अगली दफ़ा नहीं भेजेगा। तो असूल की बात यह है कि उनको ज़्यादा मिलता है जो दूसरों के दिए को अप्रिशिएट करते हैं। तो जब शुक्रगुजारी करेंगे तो याद रखिए अल्लाह आपकी मेरी नेमतों को बढ़ाएगा। किसी ने कहा, कहावत सुनी हुई है, पता नहीं बात सच है कि नहीं, किसी ने कहा कि अल्लाह मेरे नसीब का जितना रिस्क देना है ना वो दे दे, अभी दे दे, कट्ठा ही दे दे, मैं सारा अभी ले लूँ फिर बाद में ना देना। कहा ठीक है। अब क्या उसको दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया। अब जब रिस्क मिल भी गया फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा और आता जा रहा है। कहने लगा, अल्लाह मैंने तो कहा था सारा मुझे अभी दे दे, तो फिर तू अभी भी देता जा रहा है। तो जिस तरह से भी बात हुई है, जिसने कहा, बात सिर्फ समझने के लिए है, कोई इसमें हदीस या रिवायत की बात नहीं, कहने लगा कि जब तुझे मैंने इतना भी दे दिया ना, लेकिन तेरी आदत क्या थी कि तू घोड़े पे बैठ के रोटी तोड़ता था ना, तो रोटी का एक नवाला नीचे गिर जाता था या थोड़ा सा चूरा, तो तू घोड़े से उतर कर उस नवाले को या उस चूरे को उठाता था और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता था, तेरा रिस्क कैसे कम हो सकता है। यानी तेरा मैंने दे दिया पूरा, पर तू मेरे दिए हुए रिस्क की इतनी कदर करता है, उसके बदले में ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, मैं तेरे रिस्क को बढ़ाता जा रहा हूँ। किसी जगह आता गए, कहा कि तुझे तो मैंने सारा दिया पर जो तुझे दिया तू दूसरों में बांट देता था, तो जो तू बांटता था उसके बदले में तुझे और दे देता था, तेरा रिस्क नहीं कम हो सकता। तो क्या खुलासा है कि हर दम अल्लाह का भी शुक्र और अल्लाह के बंदों का भी शुक्र। और यकीन करें, आप और मैं अगर देखें ना, तो सिर्फ़ एक आँख, ये जो दो आँखें हैं ना, इसमें से एक आँख का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपको मुझे जो देखने के दो आले दिए, किसी वजह से अगर एक आँख निकल जाए ना, आपको पता है कि हमारा बैलेंस नहीं रहता देखने का, हम पूरा नहीं देख सकते। किसी ने अपनी बात शेयर की कि उनकी कोई छत की कोई चीज़ उनके ऊपर गिरी तो एक आंख का रंग बदल गया, ये बेनाई ने तो बड़ा दुखी होती थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों किया, और दूसरों की तो दो दो आंखें हैं। लेकिन किसी अंधे को देखा तो फिर एहसास हुआ कि उसकी तो एक भी नहीं है। इसी तरह गालिबन इमाम शाफ़ी या इमाम अहमद के बारे में आता है कि गुर्बत का हाल इतना बुरा हुआ कि जूता ही नहीं था पास, तो एक दिन अल्लाह से शिकवा आ गया कि अल्लाह मेरे पास जूते नहीं, मस्जिद की तरफ चल पड़े। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो देखा तो एक ऐसा शख्स क्लाइम करता हुआ क्रॉल करता हुआ आ रहा है जिसके पाँव भी नहीं है। कहा इसको देख, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास जूते नहीं पाँव तो हैं। तो जिस्म के ऊपर जो जो अल्लाह की हमारे नेमतें हैं उनको देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा। चंद सेकंड के लिए सोचिए, अगर हमारी बिनाई चली जाए, इतनी प्यारी दुनिया को हम देखेंगे। चले आप कहेंगे इधर तो मिट्टी बहुत है और कचरा बहुत है, आप मरी गए, आप सवात गए, आप घूमने फिरने गए दुनिया देखने, इतने प्यारे नज़ारे हैं आपके पास इर्द गिर्द और आपकी आंखें ही नहीं है। अपने बच्चे को देख सकते, अपने पोते को देख सकते आप, जिन चीज़ों को देखकर हमारी आंखें हीरा होती हैं हम उनमें से कुछ ना देखते। गुलाब को देख सकते थे, तरबूज को आप देख सकते थे, अनार आप देख सकते थे। तो जब एक आंख जो नज़र आती है उसके बगैर अगर ज़िंदगी अंधेरा है, तो जिस्म के अंदर तो इतने बारीक टिश्यूज़ हैं, इतने बारीक सेल्स हैं, उनकी कदरदानी उनका शुक्र कैसे कर सकते हैं। तो हमें दिन रात इस चीज़ की फ़िक्र लगनी चाहिए कि मेरे मालिक ने जो कुछ मुझे दिया है मैंने उसमें से अपने रब को शुक्रिया के साथ पलटाना है। दुनिया में आप कहते जी लेन देन, आप हमें कुछ देते हैं हम आपको दे देते हैं, दुनिया में इंसानों की ज़रूरियात बनी हुई है, आज आपको मेरी ज़रूरत है कल मुझे आपकी ज़रूरत है, अल्लाह को तो नहीं ज़रूरत, ठीक है ना। अब आपको किसी ने खाना खिलाया, आप कहते हैं अब आपने हमें दावत खिलाई, अच्छा अब अगले जुमे आप आ जाएं। दुनिया में हम तो ऐसे ही वो भावता ही कर रहे होते हैं ना कि खाई भी है जी तो खिलानी भी है, और शादी में 100 रुपया दिया था अब 100 देना भी है। और कई दफ़ा सिर्फ इसलिए वह शादियाँ बुरी लगती हैं कि उसमें देना पड़ता है और अगले ने अब हमें देना कोई नहीं, या हम ले चुके या दे चुके, बात समझ गया ना। यानी रिश्तों की मिठास को हमने भावताओं में बदल दिया। कोई कहता है ना करें, ना दे, ना ले तो क्या होगा, कहते नहीं फिर बुरा लगता है। आप समझिए इस बात को कि अल्लाह को क्या दें। एक माँ एक दफ़ा अपने बच्चे को लेकर आई, कहने लगी ये नमाज नहीं पढ़ता, इसको समझे। और जो माँ सबके बीच में आके अपने बच्चे की ये बात कह दे, मुझे बच्चे से ज़्यादा माँ ना समझ लगती है, क्या वो बच्चा मेरी बात सुनेगा। पहले ही माँ ने उसकी इज्जत तो मेरे हाथ में पकड़ा दी। देखिए ना, बच्चे की एक इज्जत होती है। अब वो आपको एक उस्ताद समझ के मिलता है या आपको बड़ी इज्जत देता है, अब आपके सामने माँ ने उसकी इज्जत तो खाक में मिला दी, अब वो आपकी बात सुनेगा। खैर, मैंने उनकी बात को इधर उधर कर दिया। फिर कहने लगी कि ये नमाज नहीं पढ़ता, कहना पड़ता है। तो सबको कहना पड़ता है, आप खुद ही पढ़ते थे, सच बताइए। जब आपने 10 साल 12 साल की उम्र में नमाज पढ़ी, खुद पढ़ कितने लोग हैं आपके जो पहले दुपट्टा लपेट के बैठे होते थे, 8 साल की उम्र में मैंने नमाज पढ़नी, सब कह के पढ़ते हैं, कहनी पड़ता है। लेकिन आप ये देखें कि आप कहते कैसे हैं, किस अंदाज से कहते हैं, किस मफहूम में कहते हैं। बात में जब एंड पे बात हुई ना, तो अब बात तो समझ आ गई हुई थी, तो मैंने फिर उसमें उनको यही पूछा बच्चे से, मैंने कहा कि ये बताएं कि आपकी दोस्त लड़की थी वो जिसकी बात हो रही थी, तो मैंने उसे कहा कि आपका अपनी दोस्त के बारे में क्या गुमान है, अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, ताल्लुक़ कैसा है, प्यार मोहब्बत का है, उनके साथ मिलने को दिल करता है। तो मैंने कहा कि जब दुनिया में किसी से दोस्ती होती है, वो हमें कुछ देता है, हम उसको कुछ देते हैं, तो हम इतने खुश होते हैं, तो अल्लाह ने तो हमें क्या कुछ दिया। यानी 4-5 मिनट में मैंने उसको सिर्फ ये बता दिया कि बेटा नमाज़ पढ़ना, दिन में 5 बार अल्लाह को थैंक यू कहना है, और अल्लाह आपका शुक्रिया आपने मुझे आंखें दी, अल्लाह आपका शुक्रिया आपने मुझे बेटा दिया, अल्लाह आपका शुक्रिया आपने मुझे घर दिया, आपने मुझे सर्दी दी तो कपड़े भी दिए। बाद में बच्ची मुझे कहने लगी, आज फर्स्ट टाइम मुझे समझ आई है कि मुझे दिन में 5 नमाज़ें क्यों पढ़नी है। अम्मी हमेशा कहती है नमाज़ पढ़े, पर अम्मी ये नहीं बताती क्यों पढ़े। बात समझ गए, लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम। जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप समझेंगे, और ये भी याद रखिए कि जो अल्लाह से नेमतें हमेशा के लिए चाहता है ना, उसको शुक्र के साथ नेमत को कैद करना चाहिए। इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह कहते थे, कय्यदो, कैद कर लो। बाज़ जगह आता है, हज़रत उमर का भी ये कॉल था, किसी का भी था, कॉल अच्छा है। कहते थे अपनी नेमतों को कैद कर लो शुक्र के साथ। एक लिफाफे में ख़त लिख के डाल दिया, फिर जब उसको बंद कर देते हैं तो उम्मीद होती है ना कि कोई ख़त नहीं खोलेगा। सील हो गया, सिक्योर हो गया, कोई भी चीज़ पैक कर देते हैं, उसके बाद वो नहीं खुलती। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हम अपनी नेमतों को महफूज कर लेते हैं, सिक्योर्ड होती हैं। तो आप चाहते हैं कि जो नेमत आज मिली है ये हमेशा रहे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह करें। फिर दिल की गहराई से शुक्र की बात, शुक्र के साथ आप दिल में झांक के बोले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ नहीं थी, सब कुछ मेरे रब की अता है, जो मिला ये उसकी अता है। वो एक शेर अक्सर रिक्शों के पीछे लिखा हुआ होता था, मुझे नहीं पता कि नबी सल्लम के लिए कहते हैं, अगर नबी के लिए कहते हैं तो शिर्क है, लेकिन अगर अल्लाह के लिए कहते हैं तो यही है शुक्र। और वो क्या है कि ये आपका करम है कि बात अभी तक बनी हुई है, वल्लाही ये अल्लाह का करम है कि अभी तक बात बनी हुई है। मेरी क्या औकात कि मैं इतने अच्छे कपड़े पहनूं, मेरी क्या औकात कि मैं इतने अच्छे घर में रहूं, मेरी क्या खूबी कि मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करे, मेरी क्या शान कि मुझे अल्लाह इतनी सुकून की ज़िंदगी दे। हर दिन सुबह उठकर बंदा आईने के सामने खड़ा हो और सल्यूट करे, और तसव्वुर में उस मासी या उस अच्छे से मुलाजिम को लाइए कि जो आते ही कहता है मुलाजम हाजिर है जी, बंदा हाजिर है, गल करो, हुक्म दे जी क्या करूं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ काम मिल गया तो मेरी ज़िंदगी सुकून वाली हो जाएगी। मेरा आपका हर रोज़ सुबह उठना इस बात का इजहार है कि हम पे मालिक की एक और नेमत आज आ गई, और वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफें उस रब की हैं जिसने मुझे मरने के बाद दोबारा खड़ा कर दिया। हर रात की नींद को अगर हम अपनी मौत समझें, तो हर दिन आप एक नई ज़िंदगी पाने के एहसास के साथ उठेंगे और आपके अंदर शुक्र की कैफियत होगी। और पीछे भी मैंने ज़िक्र किया था शायद इंट्रोडक्शन में, کہ الحمدللہ سے ایک بندے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. قرآن کا پہلا لفظ الحمدللہ صحیفہ ہے. صبح کا آغاز جاگنے کے ساتھ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور. جنتی جنت پہ جائیں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی. سورۃ الاعراف میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. ساری تعریفیں اس رب کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. تو آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھرے. آپ چاہتی ہیں؟ تو پھر آپ کو یہ سیریز سننی پڑے گی. کتنے لوگ تیار ہیں؟ اور کئی لوگ کہتے ہیں وہ شکر کی باتیں ہیں وہ تو ہمیں آتا ہے, میں تو بڑا ہی شکر کرتی ہوں. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سنائیں جی آنٹی جی کیا حال ہے. اور شکر ہے اور جس حال میں رکھے. بھئی یہ شکر ہے کہ شکوہ؟ یعنی 100 شکوے دل میں بسا کر لوگ شکر کا نام لیتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو گننا ہے. چلیے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا اس مالک کی ہم پر؟ سوچیے سب. جی صحت. آپ کیا کہتی ہیں؟ آنکھیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ سب کچھ. جی مسلمان ہونا. اور جی آپ بتائیے. ہم اس وقت قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور جی آپ قرآن کی ہدایت. ٹھیک ہے. اور جی آپ محبت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ سب ایک چیز بھول گئے. سب سے بڑی اللہ کی پہلی نعمت ہم پہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کسی نالی میں زینتا ہوا کیڑا ہو سکتے تھے. آپ اور میں سانپ ہو سکتے تھے جس کو دیکھ کر ہی لوگ بھاگ جائیں. بچھو, کاکروچ, مینڈک, لومڑی. نام لکھیے ان جانوروں کے جن کا تصور کر کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم انسان ہوتے. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد مسلمان, پھر ایمان, پھر شعور, پھر مسلمان ہونے کے بعد قرآن کی محبت, پھر فرائض کا پابند, پھر سنتوں سے محبت, پھر نوافل کا عادی, پھر اخلاق حسنہ. مانتے جائیے مانتے جائیے, سب سے بڑی نعمت انسان ہونے کے بعد آپ کے میرے پاس جو ہے وہ اسلام ہے. اللہ نے خود اس کو نعمت کہا, ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. آپ سب چونکہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا. کیونکہ سب کے پاس نعمت ہو تو بندے کو چپتی نہیں ہے. کوئی میرے دل سے پوچھے کہ جب میں ویسٹ میں باہر کبھی نکلوں, یعنی جہاں مجھے نان مسلم دکھتے ہیں, آف کورس گاڑی میں یا اگر پبلک سفر کریں جہازوں میں, زیادہ مجھے ٹریولنگ میں ہی ملتے ہیں, میرے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے کھانے سے اور یہ بھوکے ہیں. یقین کریں, مبالغے کی بات نہیں کر رہی, بالکل فیل کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں میں نے تو کچھ نہیں سوچا اور مجھے اسلام مل گیا. اس کے پاس نہیں ہے. مجھے اللہ کا پیار ملا, اس کے پاس نہیں ہے. یہ تو بیچارہ رب کو ہی نہیں مانتا. یعنی جتنا زیادہ آپ دوسروں کو سوچتے جائیں, دوسروں کو دیکھتے جائیں گے نا, آپ کو اتنا اپنا اسلام پیارا لگے گا. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے ایک بہت نعمت ہے. تیسری چیز دیکھیے, قرآن. میں تو اپنے قرآن کو پکڑ کر نا چھوتی ہوں اور پھر میں سوچتی ہوں. آپ بھی سوچیے, میرا تو دل بند ہوتا ہے سوچتے ہوئے بھی. اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہماری زندگی کہاں ہوتی؟ دیکھیں لوگ عام طور پہ نا انسانی رشتوں یا نعمتوں کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں, گاڑی نہ ہوتی تو کیا ہوتا, شادی نہ ہوتی تو کیا ہوتا, بیٹا نہ ہوتا, بچے نہ ہوتے تو کیا کرتے. میں بالکل اپنے دل کے جذبوں سے سوچتی ہوں, اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو زندگی کتنے اندھیروں میں ہوتی. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں. ایک طرف دریا ہے, ایک طرف پہاڑ ہے, اور زگ زیگ روڈ ہے, اور اتنے میں آپ کی گاڑی کی لائٹیں بند ہو جائیں اور آپ کے بریک فیل ہو جائیں. سوچ کے بھی کانپتے ہیں نا. مجھے قرآن اس طرح کی روشنی لگتا ہے کہ جس نے تو ہمیں حق اور باطل کا فرق بتایا. یہ کرو گے تو ادھر جاؤ گے, جنت کے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, جہنم کے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قرآن کی نعمت. اللہ نے تو خود اس کو کہہ دیا کہ یہ وہ نعمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، سورہ یونس کی آیت 58، اس کے ارد گرد کی آیتیں 57 58، کہ تمہیں چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے خوشیاں مناؤ، فبذالک فلیفرحوا، فرحت کا، خوشیوں کا سامان اس قرآن کے ذریعے چلیے اپنے اوپر لیں. کیا میں ان تین بڑی نعمتوں، نمبر ایک اسلام، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور نمبر تین قرآن، اور یہ تین کا حساب ہونا ہے قبر میں، اور اسی سے ملتی جلتی باتیں میدان حشر میں ہونی ہیں، کیا میں ان نعمتوں پہ غور کر کے خوش ہوتی ہوں؟ زندگی میں کبھی پریشان ہوں، کوئی ستا گیا، کوئی ڈانٹ گیا، کوئی غصہ کر گیا، کوئی آپ کا مال کھا گیا، کسی کی غلطی سے آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کے بچی کا گھر ٹوٹ گیا، آپ کے بیٹے کا گھر چھوٹ گیا، کسی نے غلط جگہ رشتہ کرا دیا، سو غم ہے ہمارے پاس دکھی ہونے کو. آپ ان سارے غموں کو اپنے اوپر لیں کہ اللہ نہ کرے یہ سارے ہی مجھے مل گئے، پر الحمدللہ میرے پاس اسلام ہے، الحمدللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہوں، اور الحمدللہ میرے پاس قرآن ہے. آپ کا پھر بھی کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اور یقین کریں معذرت کے ساتھ، میرے ذہن میں کسی دکھی بندے کو، پریشان بندے کو، اور بیماری ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بے صبرے پن پہ جتنی مجھے بدگمانی ہوتی ہے اس بندے پہ شاید ہی کبھی کسی پہ ہوتی ہو. میں کہتی ہوں جس کا اتنا بڑا رب ہے وہ کیوں مایوس ہے؟ وہ کیوں کسی پہ نظریں لگا رہا ہے؟ وہ کیوں کسی سے امید کا خواہ ہے؟ ویسٹ میں آج کل بہت سارے سیرینز مسلم آئے ہوئے، تو اللہ جانے کیا کس کے حالات ہیں، میں ایک ہی بات نہیں کہہ رہی. اب وہ سڑکوں پہ، اور فرانس میں تو گلی گلی کھڑے ہیں کونوں پہ، اور گود کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اپنے پاسپورٹ پکڑے ہوتے ہیں، کھول کے وہ صفحہ جس پہ نام ہے، اور کھڑے ہیں، اور لوگ جہاں گاڑیاں اشاروں پہ کھڑی کرتے ہیں وہ فوراً پاس آتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں اپنے بھی جو میرے ساتھ، ایک سو فٹافٹ پرس میں سے نوٹ نکالتے ہیں ان کو دیتے ہیں. پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ دیں یا دیں، مجھے بہت ہی برا لگتا ہے ان کا مانگنا. کیوں بھلا غیروں میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں؟ میں اپنے ملک کے بیگرز کو دیکھوں مجھے اتنے برے نہیں لگتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم سب مسلمان ہیں. یہ ایسی ہے جیسے بچے نے غلط بات کر دی لیکن گھر والوں کے سامنے ہی کر دی. جب میں نان مسلمز میں مسلمان کو کمزور، دکھی، منگتا دیکھتی ہوں، اور غیر مسلم آ کے ان کے ہاتھ میں ایک یورو ڈال دے، دو ڈال، میرا دل کرتا ہے میں زمین میں ڈوب جاؤں. پتہ نہیں کیا وجہ، شاید اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ پہ نظریں بندے کی اس دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہیں. میں کہتی ہوں یہ یہاں سڑک پہ کھڑی عورت اب مانگ رہی ہے، یہ رات کو تہجد میں کیوں نہیں مانگ رہی؟ کہ اللہ رات کو آ کے خود کہتا ہے کہ ہم کون ہے جو رزق مانگنے آئے، اب دوسروں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں کری، نہ فتویٰ، یہ ایک میری پرسنل فیلنگ ہے، نہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ ثواب کی ہے، وہ مجبوریوں میں ہی مانگتے ہوں گے. لیکن ایک مسلمان کی خودی اور انا اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے نہ دبے، رب کے آگے ٹوٹے، روئے مجبور، انی فقیر انی مستر، اور اللہ مجھے دے دے، لیکن بندوں کے سامنے مسلمان کا سر اٹھانا چاہیے. کوئی بیماری نہیں الحمدللہ. اور ان لوگوں پہ بھی مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو اپنے غم سناتے ہیں، دکھ. کیا ہر بندہ ڈاکٹر؟ دیکھیے آپ کے میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائیں گے تو علاج کرے گا نا، بتانی چاہیے، ڈاکٹرز کو بتانا چاہیے. لیکن آپ ان کو بتا رہے ہیں جو غریب بیچارے خود مریض ہیں، آپ ایک سناتے ہو کہتے ہیں پہلے بیٹھو میں سناتی ہوں، تمہیں تو ایک گھوڑے میں درد ہے، میرے تو دونوں گھوڑے خراب ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے. اور پھر اس کے بعد مسئلے مسائل، مقدمے پڑ گئے، یہ ہو گیا، کھا گئے پی گئے. کیوں بھائی؟ آپ کے میرے ارد گرد رہنے والے لوگ لائرز ہیں، وکیل ہیں، الوکیل کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا وکیل بناتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ. میں کہتی ہوں اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے بندوں کے پاس آتے ہیں. یہ تو ایسی ہے کہ کوئی صدر اوباما کے پاس جانے کی بجائے کسی چھوٹے سے 1000-1200 کی تنخواہ کرنے والے ملازم کے پاس جا کر کچھ مانگ لیں. جب آپ کا میرا رب اتنا بڑا ہے، وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر ہم بندوں میں الجھتے ہیں. اور جب رب کے پاس جاتے بھی ہیں تو مانگتے کیا ہیں؟ ٹکے مانگتے ہیں، کوڑیاں مانگتے ہیں. وہ اتنا زیادہ ہمیں دے سکتا ہے، ہم تھوڑا سا لے کے خوش ہوتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس جائے، और बादशाह उसको कहता है मांगो, क्या मांगते हो? तो आपके बादशाह सलामत मुझे वो 10 रुपये दे दें। तो आपको कहते बादशाह नाराज़ होगा, वो कहेगा तुमने मुझसे 10 रुपये मांग के मेरी बेइज्जती की। मुझसे मांगते कोई लाखों मांगते, करोड़ों मांगते, बड़े बादशाह से छोटी चीज़ मांगे वो नाराज़ होता है। अल्लाह से छोटी चीज़ें क्यों मांगते हैं आप, बड़ी क्यों नहीं मांगते? लेकिन ये बड़े ऊपर के दर्जे हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, इसी के अंदर आपको सारा शुक्र सिखाना चाहूँगी। हम इसको तकरीबन 5 से 6 नशिस्तों में करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। 5 होंगी आज के बाद, 4 और होंगी इंशाल्लाह ताला। हमने रब को पहचाना नहीं है। लोगों को कहते हैं हमारे काम करा दो, दुआ में याद रखना, ख्याल रखना, पूछना, सबको पता होता है। अल्लाह दिलों में डालता है। देखिए इंसान इंसान का सहारा होते हैं, कह सकते हैं असबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नहीं, वो मुसब्बुल असबाब है, वो खुद ही दिलों में डाल देगा। अभी चंद दिन पहले एक किसी का एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी ने भेजा हुआ था कि कोई हज या उमरे पे गए, तो वहाँ उन्होंने अपनी ये कहानी सुनाई। हज के लिए पैसे जमा किए हुए थे और शायद कोई बेवा औरत आ गई तो उसकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं हज पे तो जाना है लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। इन्होंने उनको दे दिए, ये दे दिए ख़त्म, क्या मैं हज पे नहीं जा सकता, मैंने कई साल से जमा किए थे वो तो ख़त्म हो गए। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर तसव्वुर करते हैं ना। अल्लाह का हुक्म देखिए कि उधर से वो पैसे दे के फारिग हुआ, कोई बहुत बड़ा बंदा आया और कुछ इस तरह की कोई कहानी थी कि उसने कहा कि मैं किसी अच्छे बंदे को ढूंढ रहा हूँ कि जो मेरे फलां का हज कर दे, हज बदल, वो बग़ैर पैसों के उसको हज पे भेज दिया। उस पर नज़रें लगाएं, खुश हो जाएंगे आप, इस दुनिया में भी खिलेंगे। फिर रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार का मतलब समझ आएगा आपको। इससे पहले नहीं समझ सकते आप और मैं। और याद रखिए, जितना ताल्लुक बिल्ला मजबूत होगा, आप उतने बादशाह हैं, आप उतने अमीर हैं, आप उतने खुश हैं, आप उतने पुरसकून हैं, आपको बीमारी कोई नहीं आएगी। लोग कहेंगे तो आप बीमार क्यों नहीं होते? अच्छा, जो लोग ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, वो ज़्यादा बीमार हुए होते हैं। जो ज़्यादा अच्छी खुराक खाते हैं ना, उन्हीं में विटामिन डी कम होता है, उन्हीं का कैल्शियम कमज़ोर है। पूछ लीजिए, जो अपने बच्चों को लपेट लपाट के रखते हैं, उन्हीं के बच्चे ज़्यादा बीमार हुए होते हैं। कभी आपकी मासी के बच्चे को ठंड कम ही लगी होगी, आपके चुन्ने मुन्ने को लग जाएगी, क्योंकि आप उसको बहुत लपेट के रखते हैं। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक मज़बूत होगा ना, वो आपको उतना ज़्यादा नवाजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह के कई लोग हैं ना, बाहर कह रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको पता है क्या कह रहे होते हैं असल में? अल्हम्दुली अल्हम्दुली अल्हम्दुली, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, सारे शुक्र उसके, और क्या कह रहा था, सारी तारीफ़ें मेरी, सारी मेरी, सारी मेरी। एक वक्त आता है लोग आपकी तारीफ़ करें, आपकी तलब होती है, दूसरा तलब नहीं लेकिन कोई करे तो खुशी होती है, और एक तीसरा दर्जा आता है कोई आपकी तारीफ़ करे आपको गुस्सा आता है, आप उलझन होती है, मेरी क्यों करते हो, उसकी करो जिसने ये सब दिए। जितना आप अपने रब को पहचानते जाएंगे, उसकी मार्फत आती जाएगी, उतना ज़्यादा आप नेमतों को पहचानेंगे। तो क्या बात समझ आई इस बात में, कि सबसे कटकर रब पे नज़रें लगा लीजिए। जो उसने आपको दिया है ना, उसको अपना हक नहीं समझें, उसकी अता समझें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में शुक्र गुजारियाँ आ जाएंगी। नीचे देखिए दुनिया के मामलों में, और दीन के मामलों में अपने से ऊपर देखिए। लेकिन एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि अल्लाह का शुक्र या अल्लाह की तारीफ़ करनी कैसे है। इंशाल्लाह हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर इसको कवर करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का हाल क्या है, शुक्र के नाम पर सिर्फ ज़ुबान से कहते रहते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमली इजहार नहीं करते, दिल भी खुश नहीं होता। कुछ लोगों का दिल भी खुश होता है, ज़ुबान से भी कहते हैं, लेकिन खुशियों के वक्त पे ही अल्लाह को ज़्यादा नाराज़ करते हैं। तो शुक्र के 3 दर्जे होते हैं, शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल लिसान और शुक्र बिल जवारेह। पहला क्या है, दिल से शुक्र। ये क्या कैफियत है, अपनी चेक करिएगा आप खुद, क्योंकि मेरी आपको नहीं पता, आपको मेरी नहीं पता, ये अलग बात है कि फिर भी पता लग ही जाती है, ये चीज़ छुपती नहीं है। शुक्र बिल कल्ब क्या, आपका दिल कितना खुश है, पूछे इस वक्त भी मेरा दिल कितना खुश रहता है, क्या दिल उड़ रहा है हवाओं में जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हैं, मेरे जैसा तो किसी का है ही नहीं नसीब, या गम है, परेशानी है, नेमतों से सरशार बंदा दिल का शाकिर है। दूसरी बात जुबान, जुबान से शुक्र। आम तौर पे जुबान पे क्या लफ्ज़ आ रहे होते हैं अल्लाह की तारीफ़ के, और वाकई बंदा इतना शुक्र अदा करे कि लोग कहें कि ये दिखावा कर रहा है, लेकिन करें कि अंदर से उबल रहा है चश्मा। देखिए आंसू आए तो आप रोक नहीं सकते ना, फितरत का असूल है। शुक्र एक चश्मा है, जब अंदर उबलता है ना तो कभी चेहरे पे, कभी लफ्ज़ों में, कभी दूसरी तरह बात आती है। और तीसरा दर्जा शुक्र का बिल जवारे, जब कोई नेमत मिले तो फिर नेमत देने वाले की रज़ा के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, उसकी खुशी के साथ उसको इस्तेमाल करें। अमूमन ये तीसरी सीढ़ी पे कम ही लोग चढ़ते हैं, बल्कि माजरत के साथ ज़रा तकलीफ़ों में, दुखों में होते हैं तो दबे रहते हैं, और जितनी बड़ी नेमत उतनी बड़ी नाफरमानी। और आज हमारा हाल, अल्लाह माफ़ करे, सबका नहीं बट कमोबेश ये हो गया कि हम अपनी खुशियों में सबको खुश करना चाहते हैं, हत्ता के घर के नौकरों को भी खुश रखते। कहते मासियों को खुश करो, खालाओं को खुश भेजो, फुफियों को खुश खुश भेजो, समझ गए होंगे जो हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन ऐसे वक्तों में नहीं खुश करते तो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं करते। और उन महफ़लों में सब बड़ों को बुला लेते हैं, मशीर, वज़ीर, मेयर और सदर और फलां के MPA, फरिश्तों का दाखला ममनू और जिसका भी ममनू। ये अमली ना शुक्रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल से शुक्र करने वाला बना दें, क्योंकि जितना शुक्र करते जाएंगे उतना शुक्र बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चंद बातें थी शुक्र से मुतल्लिक।